जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गिरधारी राधा गिरधारी राधे राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यम् नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीव्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरा भवति नैष्टिकी आज हम श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद का चौथा अध्याय इनका शीर्षक है राजा कंस के अत्याचार श्लोक संख्या नंबर तीन सतल्पान् तूर्णम् उत्ताय कालयम् इति विहवल स्तुतिग्रहम् अगा तूर्णम् प्रश्कालन् मुक्त मूर्धज सतल्पा तूर्णम् उत्थाय सतल्पातूर्णमुत्थाय कालोऽयमिति विवलः कालोऽयमिति विवलः स्तुतिग्रहं मगातूर्णम् स्तुतिगृहं मगातूर्णम् प्रस्कलन्मुक्तमूर्धज सतल्पातूर्णमुत्थाय कालोऽयमिति विबलः कालोऽयमिति विबलः स्तुतिगृहं मगातूर्णम् प्रस्कलन्मुक्तमूर्धज
शब्दार्थ इस प्रकार है सह वह कंस तल्पा बिस्तर से तूर्णम शीघ्र ही उद्धाय उठकर कालः अयम् यह रही मेरे मृत्यु परम काल इति इस प्रकार विवला उद्विग्न स्तुतिग्रहम शोर को अगात गया तूरम देरी लगा बिना प्रस्कलन बिखरे हुए मुख खुले मूर्धजा सिर के बाल। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमत ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्ल प्रभुपाद जी के द्वारा श्ल प्रभुपाद की अनुवाद। कंठ तुरंत ही बिस्तर से यह सोचते हुए उठ खड़ा हुआ, यह रहा काल जिसने मेरा वध करने के लिए जन्म लिया है। इस तरह उद्विग्न एवं अपने सिर से बाल विखारे कंस तुरंत ही उस स्थान पर पहुंचा जहां शिशु ने जन्म लिया था। तात्पर्य, काल शब्द महत्वपूर्ण है। यद्यपि यह बालक कंस का वध करने के लिए उत्पन्न हुआ था, किंतु कंस ने सोचा कि यह बालक का वध करने का यह उपयुक्त समय है जिससे स्वयं उसका जीवन बच जाएगा। वास्तव में काल भगवान का ही दूसरा नाम है। जब वे वध करने के उद्देश्य से प्रकट होते हैं, जब अर्जुन ने विराट रूप कृष्ण से पूछा आप कौन हैं, तो भगवान ने कहा कि मैं साक्षात काल हूँ। प्रकृति का नियम है कि जब अवांछित ऋषि से जन्म संख्या में वृद्धि होती है तो काल प्रकट होता है, और भगवान की ऐसी व्यवस्था बनती है कि लोग बड़ी संख्या में युद्ध, महामारी, दुर्भिक्ष आदि नाना कारणों से मारे जाते हैं। उस समय नास्तिक राजनीतिक नेता भी गिरिजाघर, मस्जिद या मंदिर जाकर ईश्वर के कृपा मांगते हैं, किंतु इसके पूर्व वे भगवान को यह उनकी इच्छा को जानने के कोई प्रयास नहीं करते। काल के प्रकट होने पर ही वे कृपा मांगते हैं। मृत्यु परम काल अर्थात भगवान का एक दूसरा गुण है। मृत्यु के समय नास्तिक को काल के समक्ष घुटने टेकने पड़ते हैं, और तब भगवान उसकी सारी संपत्ति हर लेते हैं। मृत्यु सर्वहरश्चाहम, और उसे दूसरा शरीर धारण करने के लिए बाध्य कर देते हैं। तथा देहांतर प्राप्ति, नास्तिक लोग इसे नहीं जानते, और यदि जानते भी है तो उपेक्षा करते हैं जिससे वे अपना सामान्य जीवन बिता सके। कृष्ण भावनामृत आंदोलन उन्हें सिखलाने का प्रयास कर रहे हैं कि भले ही वे कुछ वर्षों तक महान रक्षक या प्रहरी बने रहे, किंतु काल के प्रकट होते ही उसे दूसरा शरीर धारण करना होगा। यही प्रकृति का नियम है। इसे न जानने के कारण वे प्रहरी बनकर अपना समय व्यर्थ गवाते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते। स्पष्ट कहा गया है अप्राप्यम माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमणि। कृष्ण भावनामृत के बिना मनुष्य को जन्म मृत्यु में भटकते रहना पड़ेगा, और इसका पता नहीं चल पाता है कि अगले जन्म में क्या होगा।
होम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपग्राह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सार्वदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगतपते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्ते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुधे देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्चकृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो जैसे यहां पर अब यह सूचना प्राप्त हो रही है कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य होते भगवान कृष्ण गोकुल वृंदावन गोकुल की ओर पहुंच गए और यहां पर वसुदेव ने योग माया देवी को यहां पर इस स्थान पर ला इस जेल में लाकर रख दिए। तो जैसे उन्होंने यहां पर लाकर रखे तो उनके हाथ के जो बेड़ी जो थे जो खुले थे वो पुनः बंद गए और उनके रोने की आवाज सुनते ही वहां के जो सिपाहीगण तुरंत ही दौड़कर कंस को जाकर खबर देते हैं। तो वर्णन आता है सत्तल्पात पूर्णम उत्थाय, जैसे उनको यह सुनाई पड़ा कि अब आठवां बालक ने जन्म ले लिया तो सुनते ही वो तुरंत ही अपने बिस्तर से उठ गए और कालोयम इति विवलः इतने उत्साह से वो उस स्थान की ओर निकल पड़े क्योंकि वह जानना चाहते थे कि वो जो मेरा जो काल जो जन्म लिया है मैं उसे अपने हाथ से उनका वध कर दूं। और इस प्रकार उन्होंने प्रयास करते हुए उसे मारने के लिए तुरंत ही तैयार हो गए। तो विवलह यानी उद्विग्न होकर वो तुरंत ही उस स्थान की ओर निकल पड़े। तो यहां पर कंस की ऐसी परिस्थिति है कि कंस जो था दिन रात केवल अपने काल के विषय में सोचता था। वो सोते जागते उठते बैठते केवल कृष्ण के विषय में स्मरण करता था। हालांकि ये जो स्मरण जो है वो प्रतिकूल रूप में था, जो जबकि भक्तगण भगवान के अनुकूल रूप में स्मरण करते हैं, मगर इनका केवल एकमात्र प्रतिकूल रूप में स्मरण रहने के कारण उसे भक्ति नहीं माना गया। लेकिन इस प्रकार वह दिन रात स्मरण करते थे, जैसे कि महाभारत में जहां पर वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण के पास एक विशेष प्रकार का एक आईना था और ये आईने में जब कोई देखेगा तो उसे उसी का चेहरा दिखेगा जो कृष्ण का अधिक स्मरण कर रहा है। तो अर्जुन ने यह निवेदन किया, मैं भी देखना चाहता हूं कि आपका ज्यादा स्मरण कौन कर रहा है। तो अर्जुन ने इस जिज्ञासा से उस आईने में जब चेहरा देखा तो उन्हें किसी भक्त का चेहरा नहीं दिखा, उन्हें चेहरा दिखा तो शकुनी का दिखा। तो अर्जुन बड़ा हैरान हो गया कि ये शकुनी मामा, जबकि आपके इतने बड़े बड़े भक्तगण हैं, कुंती महारानी भीष्म पितामह इत्यादि इतने बड़े भक्त होने के बावजूद भी उसका चेहरा नहीं दिख रहा है, शकुनी मामा का चेहरा दिख रहा है। और वैसे भी शकुनी मामा 12 महाजन में एक है भी नहीं और उनका जैसे विआर चोपड़ा जैसी बताते कि उनका एंट्री आते ही एक विशेष प्रकार का म्यूजिक रहता है। तो ऐसे वो निरंतर स्मरण करता था। तो यहां पर जब अर्जुन ने जब प्रश्न किया तो कृष्ण कहने लगे शकुनी मेरा निरंतर चिंतन करता है, वो हमेशा ये सोचता रहता है कि अब मैं दूसरा चाल कौन सा चलूंगा और उसे काटने के लिए और तीसरा चाल कौन सा चले। और वो केवल वो कृष्ण की बुद्धि के विषय में सोचता रहता था और इतना वो कृष्ण के विषय में स्मरण में डूब गया था, लेकिन कोई लाभ नहीं। तो वास्तविक अनुकूल रूप में जब तक स्मरण नहीं किया तब तक उसका क्या फायदा। और आज के तारीख में जितने भी वैज्ञानिक लोग हैं वो सभी लोग प्रतिकूल रूप में स्मरण कर रहे हैं। प्रतिकूल रूप में क्या स्मरण कर रहे हैं, कैसे हम मृत्यु को टाल देंगे। और यहां पर वैसे ही कंस जो था वो अपने मृत्यु को टालने के लिए वो नाना प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। मृत्यु एक ऐसी वस्तु है जिससे हर व्यक्ति घबराता है, जो भी जिसके सामने वो आ गया तो उसके सब कुछ हर लेगा। और इस मृत्यु से बचने के लिए लोग अलग अलग प्रकार से प्रयास में लगे हैं। जैसे हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में जहां पर हिरण्यकशिपु ने अपने मृत्यु से बचने के लिए क्या क्या नहीं किया। उन्होंने स्वर्ग के 100 वर्ष तक उन्होंने तप किया, और स्वर्ग का एक दिन यहाँ का 6 महीना है, तो ऐसे हजारों वर्ष तक वो अंगूठे में खड़े रहकर उन्होंने तप किया। और तप कर कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, और ब्रह्मा जी ने जब पूछा तुम्हें क्या चाहिए तो ये कहने लगे कि मुझे ऐसा वर दो कि मैं कभी नहीं मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा क्षमा करिए, मुझे भी एक दिन मरना है, कोई और विधि है तो कुछ और मांगो। तब उन्होंने कहा, तब नाना प्रकार से उन्होंने अलग अलग उन्होंने अपने शर्त रखे, न भूमर न अंबर इति मृत्युर मास, मेरे जीवन में कभी मृत्यु ना आए। और इस प्रकार से वो ये कहने लगे, यदि दास्यते अभिमतान वरान में वर्धोत्तम, अगर तुम्हें कुछ वर देना है तो यही वर दो कि मेरी मृत्यु ये स्थिति पर ना आए। हालांकि ब्रह्मा जी को इस प्रकार प्रसन्न करने के बाद भी ब्रह्मा जी ने उनको ऐसे अलग अलग प्रकार के शर्त को मंजूर करते हुए भी हिरण्यकश्यपु का मृत्यु आना था तो ध्रुव आया ही, उसे कोई नहीं रोक पाया। जैसे ये काल के जो चक्र हैं ये किसी को नहीं छोड़ता, यही इसी बात को श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में जहां पर भगवान वर्णन करते कि ये काल कौन है, कोई और नहीं स्वयं मैं हूं, कालो अस्मि, मैं स्वयं वो काल हूं। और इस प्रकार भगवान उस व्यक्ति के सब कुछ हर लेते हैं और जब किसी के सामने आकर खड़े होते हैं तो वो जो काल से कोई नहीं बच सकता। जैसे सत्स्वरूप महाराज अपने गीत में ये लिखते हैं, वो लिखते हैं कि ग्रास ओपर किल्स द इंसेक्ट और लिजर्ड किल्स द ग्रास ओपर, फ्रॉग किल्स द लिजर्ड एंड स्नेक किल्स द फ्रॉग एंड ईगल किल्स द स्नेक and man kills the eagle and time kills them all। तो वैसे जो समय का जो चक्र है वो किसी को नहीं छोड़ता, समय का चक्र जो है वो सबके ऊपर मंडराता है और उस व्यक्ति की आयु को हरता जाता है। इसलिए कहा गया है आयु रहती वै पुंसम उद्यम अष्टम से ये नो सत्यार्थी अक्षणम नित्यम उत्तम श्लोक वार्तया। तो जो हमारी आयु को जो छीनने वाला जो काल का जो चक्र है सूर्य देव, वो समय पर उगता है और समय पर ढलता रहता है, और होता क्या है हमारे आयु को चुराया जाता है। प्रति हर एक क्षण केवल हम काल के चक्र के दबाव में ग्रस्त हो रहे हैं और इससे कोई नहीं छूट सकता। यहाँ पर कंस का ये विचार था कि मेरा मृत्यु ने काल ने अभी जन्म लिया है, जबकि मृत्यु काल रूपी जन्म कब लेता है, जब व्यक्ति का जन्म होता है। जन्म लेने से ही उसी दिन उसका डेट फिक्स हो जाता है कि ये कब मरेगा। तो वैसे कंस का जो विचार था वास्तविक वो अज्ञानता पूर्वक था। जैसे हम देखते हैं शिशुपाल, शिशुपाल का जब जन्म हुआ उसी दिन उसकी माँ को पता लग गया कि इसकी मृत्यु किसके हाथ से होगी। तो वैसे ही जो जन्म लेता ही है, जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च, जैसे किसी ने जन्म लिया उसका मृत्यु निश्चित है, इस काल के प्रभाव से कोई नहीं बच सकता। जैसे बताया जाता है कि एक समय की बात थी कि जब बुद्ध भगवान के समक्ष एक महिला आई और उन्होंने बहुत उनके पास उनका एक बालक था जो कि मृत्यु को प्राप्त कर लिया था। तो ये महिला ये विचार से आई थी कि ये साधु संत मेरे बच्चे को पुनः जीवित कर देंगे, और ऐसे सोचकर उन्होंने आकर उनसे प्रार्थना किए कि कृपा करके मेरे संतान को पुनः जीवित कर दो, आप साधु संत हो। और यहां पर बुद्ध भगवान कहने लगे, ठीक है मैं तो उसे जीवित तो कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम उस घर से थोड़ा सा राई लाना जिस घर पर कोई नहीं मरा होगा। तो बोला ठीक है, तुरंत ही दौड़ लगाने लगी, हर घर पर गई, सभी घर पर उन्होंने जाकर पूछताछ किया। तो किसी के घर पर किसी का सास, किसी के ससुर, किसी के नाना, किसी के चाचा, किसी की नानी, सभी लोग कोई ना कोई मरे हुए हैं। और ऐसे भटकते भटकते जब वो परेशान हताश हो गई तब वो वापस आई, और वो वापस बुद्ध भगवान को प्रणाम करते हुए कहती है कि जो वास्तविक आप समझाना चाहते थे अब मैं समझ गई। यह मृत्यु एक ऐसी वस्तु है जिससे कोई नहीं छूटता है, हर व्यक्ति इसका शिकार है। और इस प्रकार उनके जो वास्तविक जो ज्ञान है उसी समय वहां पर प्रकट हो गया। तो यहां पर जो कंस की जो परिस्थिति थी, जो कंस जो सोच रहे थे कि मैं इस मृत्यु से बचने के लिए अपने तौर तरीके से बच सकता हूं, और वाकई ये मृत्यु से बचने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। जो आज के तारीख में सबसे ज्यादा जो कंपनी जो चल रहा है तो वो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये कंपनी सबसे ज्यादा मुनाफा में चल रहा है क्योंकि हर व्यक्ति को डर है कि कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए, और उस डर को केवल प्लास्टर लगाकर छुपाने के लिए लोग लाइफ इंश्योरेंस कार्ड खरीद लेते हैं। और हालांकि उसमें लिखा है योगक्षेमं वहाम्यहम्, जो तुम्हारे पास नहीं है वो देंगे, जो है उसकी रक्षा करेंगे, वो केवल नाम मात्र है, मरने के बाद वही जो वस्तु किसी और को प्राप्त होगा। तो लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ब्रह्मा जी का जीवन बीमा फेल हो गया तो इस भौतिक जगत का जीवन बीमा क्या रक्षा करेगा। हर व्यक्ति, भले ही व्यक्ति अपने जीवन की रक्षा के लिए तरह तरह के मार्ग ढूंढ ले, वो लेकिन नहीं बच पाएगा। हालांकि कंस तो उतना तो ज्ञान था कि कंस को कि मृत्यु आ रही है, लेकिन आज के तारीख में लोग कंस से भी गए गुजरे कि उन्हें यह भी नहीं पता लग रहा है कि उसकी मृत्यु आ रही है। उनकी स्थिति किस प्रकार है वो बताते हैं कि ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत यावत जीवेत सुखम जीवेत भस्म भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमन कुता। उनकी स्थिति इस प्रकार है कि ऋणम कृत्वा, भले उधार ले लो, और उधार लेकर क्या करो, घृतम पीवेत, खूब घी वगैरह खाओ, खूब घी वगैरह खाओ, यावत जीवित सुखम जीवे, जब तक जी रहे तब तक सुखपूर्वक जियो। और क्या कहते हैं, भस्मती, ये जब शरीर भूतवा, ये जब शरीर जब भस्म हो जाएगा तो पुनरागमन कुता, किसने देखा है पुनर्जन्म है भी क्या, जब तक ये देह है तब तक मौज मस्त में रहो। और उनकी ये विचार है, जबकि यहाँ पर कंस को तो इतना तो खबर था कि मेरी मृत्यु आ रही है तो मुझे उससे बचने के लिए कुछ प्रतिशोध करना होगा, हालांकि आज के तारीख में कंस की तरह भी लोग नहीं है, जैसे कि कंस यहाँ पर कम से कम संतान को जन्म देने के लिए तो प्रतीक्षा में था, आज के तारीख में लोग संतान को गर्भ में ही खत्म कर देते हैं, एबॉर्शन। जबकि कंस ने सोचा कि मैं एबॉर्शन नहीं कराऊंगा, क्योंकि कंस तो उतना तो उसके पास उनकी बुद्धि थी या उतनी समझदारी थी कि उतना मैं पाप नहीं करूंगा। तो आज के तारीख में जो एबॉर्शन करते हो कंस से भी गए गुजरे, उनको कंस भी कह दिया जाए तो उसका गुणगान होगा। तो वास्तविकता में ये जो कंस जो है वो संतान को जन्म तो देने के लिए इंतजार में था, और वैसे कंस ने अपने मृत्यु से बचने के लिए, अपने मृत्यु से प्रतिशोध करने के लिए उन्होंने तुरंत ही अपने स्थान से बताते सत्कल्पा तूर्णम उत्थाय, तुरंत ही वो बिस्तर से उड़ गए। अब बिस्तर से उठना मतलब बहुत बड़ा तपस्या है, खास करके भक्तों को अनुभव हो सकता है सुबह 3 से 4 बजे के बीच में, तो वो बहुत बड़ा तपस्या है या बहुत बड़ा बल चाहिए बिस्तर से उठना। और यहाँ पर कंस ने ऐसी शक्ति को लगा दी कि वो उठ गए, और उठकर बड़े उत्साह से वो उस स्थान पर गए जिस स्थान पर कृष्ण ने जन्म लिया, ये सोचकर कि मेरे काल ने जन्म लिया। तो कंस जैसे जो चेले जो होते हैं वो कभी नहीं चाहते कि कहीं पर कृष्ण भावनामृत के भक्ति का जन्म हो। किसी के हृदय में अगर कृष्ण भक्ति का जन्म होते ही लोग नाना प्रकार से उस पर इस प्रकार के अत्याचार लगाते हैं कि उसके जितनी भी जीवन की भक्ति है वहीं पर ही रुक जाए। और आज के तारीख में लोग कृष्ण भावनामृत के आंदोलन को आगे बढ़ने के लिए जब जाते हैं तो लोग तरह तरह के तर्क रखते हैं। हाल ही में मैं गया था नासिक में 2 दिन पहले, वहां पर एक बड़ा स्मार्ट ब्राह्मण था, इतना कट्टर ब्राह्मण था, तो वो कह रहे थे कि तुम लोगों के हरे कृष्ण आंदोलन में तो हमें ठीक है तुम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये क्या तुम लोग करताल वगैरह लेके सड़क पर ऐसे चिल्ला चिल्ला कर गा कर जाते हो, ये कोई तरीका है? ऐसे थोड़ी होता है। अरे जब होता है तो मन के अंदर होता है, उसमें होठ जीभ नहीं हिलना चाहिए, इतना अंदर होता है कि तुम्हारे मन के अंदर बैठा हुआ परमात्मा को भी नहीं पता लगना चाहिए। तो वैसे तुम लोग तर्क रखते हैं और कहते हैं कि जब इस प्रकार होता है ये क्या तुम लोगों का कोई सही ढंग नहीं है। तो ऐसे तरह तरह के तर्कवादी जो कि केवल कृष्ण भक्ति को जब कोई आगे बढ़ाता है तो लोग इसे रोक टोक लगाते हैं। रशिया में जब श्रील प्रभुपाद के समय पर, जब श्रील प्रभुपाद इस रशिया में जब कृष्ण भावनामृत के आंदोलन को जब बढ़ा रहे थे, उस समय रशिया के जो कम्युनिस्ट लोग थे वो लोग 3 लोग से बहुत डरते थे, एक था रॉक एंड रोल, दूसरा था कोको कोला और तीसरा था हरे कृष्णा वाला। ये 3 लोग से ये कम्युनिस्ट लोग इतना घबराते थे क्योंकि हरे कृष्ण का प्रचार जोर शोर में चल रहा था। तो इन लोग क्या किए कि जब भी कोई हरे कृष्णा वाले को पकड़ने आ जाते थे सड़क पर ऐसे कीर्तन करते हुए तो उन्हें पकड़कर जेल में डाल देते थे। अब जब इन लोग जेल में चले जाते थे तो प्रभुपाद को खबर मिलता था कि प्रभुपाद हमारे भक्तगण जेल में हैं, तो प्रभुपाद कहते थे डोंट वरी स्टार्ट कीर्तन इन जेल, चिंता मत करो जेल के अंदर ही कीर्तन शुरू कर दो। और जितने भी लोग थे सब जेल के अंदर कीर्तन शुरू कर देते थे, और उसे जेल के अंदर कीर्तन शुरू करते थे सारे कैदी लोग भी साथ में जुड़ जाते थे और अंदर एक अलग माहौल बन जाता था। और वहां तक कि वहां पर जो देखरेख करने के जो चपरासी जो सोल्जर जो थे वो लोग भी जब कोई अफसर आता था हरी बोल तो अफसर सोचने लगा ये लोग जेल के अंदर ज्यादा खतरनाक है, बाहर तो रहने दो इन लोग को, तो उन लोग जेल से हटा के बाहर भेज देते थे। तो ये हरे कृष्णा वाले कहीं पर भी जाते थे लोग परेशान रहते थे, और एक को पकड़कर उन्होंने जब जेल में डाल दिया, जो कि ये सॉल्ट ब्रेड में इसका वर्णन आता है, तो वो भक्त ने उनको जब जेल में डाले तो उन्हें तरह तरह से अत्याचार करने लगे, तो उनके जप माला वगैरह उनसे कुछ नहीं किया, उनसे सब छीन लिया। तो उन्होंने क्या किए कि वो जो ब्रेड दिया जाता था तो वो सूखे ब्रेड को पानी में डुबाकर उसका बॉल बनाकर, वो छोटा सा मनी बनाकर, ऐसे उन्होंने 108 मनी बनाकर उसमें वो जप करते थे। यहाँ पर हमारे पास बना बनाया जप माला है, तो भी हाथ लगाते ही व्यक्ति को तुरंत ही योग माया निद्रा में खो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि उनका क्या उत्साह था, और वैसे उत्साह से उन्होंने वहां पर उस जेल के अंदर उन्होंने भजन किया। और ऐसे बताया जाता है कि एक भक्त का उसी जेल में मृत्यु हो गया, और कैसे हुआ, वहां के जो पुलिस लोग हैं उन लोग भी आश्चर्यचकित है कि ये कैसे दृश्य है। तो उनका ऐसे हुआ कि जो पेस्ट जो था उस पेस्ट को लेकर उन्होंने तिलक बनाया, और तिलक बनाकर उस जो ब्रेड का सूखा ब्रेड उन्होंने माला जप माला बनाया, और गले में माला डालने के लिए उन्होंने पेपर का पेपर फाड़ कर उन्होंने गले में वरमाला डाले, और इस प्रकार बैठकर केवल मुस्कुराते हुए जप करते हुए देह त्याग दिया। और ये देखकर वहां के पुलिस लोग सब घबरा गए कि ये कौन सा दृश्य है। वास्तविकता ये जो इस प्रकार के कंस भले ही कितना भी अपना जोर लगा ले, लेकिन कृष्ण भावनामृत की चिंगारी को कोई नहीं रोक सकता। एक बार आग लग गई तो उस आग को कोई नहीं बुझा सकता। तो हो सकता है कि शुरुआत में हमें खबर मिलेगा कि घर के अंदर आग लगा है, शुरुआत में खबर मिल सकता है, लेकिन थोड़े ही समय के बाद ये खबर मिलेगा कि घर आग के अंदर है, क्योंकि आग जो है घर को पकड़ने के लिए समय नहीं लगाएगा। वैसे ही एक जेल के अंदर एक चिंगारी ने जन्म ले लिया, और वो अब बाहर भी आ गया, पूरे विश्व भर में उसका जो आग है चिंगारी है वो फैलने के लिए देर नहीं होगा। और यहाँ पर कंस सोच रहा था कि मैं इसी चिंगारी को बुझा दूंगा, और इस प्रकार बड़े उत्साह से वो उस स्थान से निकल पड़े, और कालोयम इति विवलः सुति गृहम अगात तूर्णम, और वो उस जेल के अंदर बिना देरी करते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां पर उनका काल जन्म लिया है। और इस प्रकार वो सोचते हुए मुक्त मूर्त जा उनके शरीर के सारे जो रोंगटे थे वो खड़े हो गए, वो घबरा कर उस स्थान पर गए। तो जो अभक्त जो होते हैं उनके लिए जो काल जो होता है वो हमेशा घबराहट पूर्वक होता है। तो वही भगवान वही अभक्तों के सामने काल के रूप में आते हैं, और भक्तों के सामने श्याम सुंदर के रूप में प्रकट होते हैं। जैसे प्रसिद्ध एक उदाहरण है, जैसे बिल्ली का मुंह जो है वो जब चूहे को पकड़ता है तो चूहे के लिए बिल्ली का मुख मृत्यु के काल के समान है, और वही बिल्ली जब अपने बच्चे को पकड़ता है तो वही बच्चे को वही बिल्ली का मुख बड़ा सुरक्षित स्थान है। और वैसे ही यहां पर वो जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अब इस नास्तिक के सामने काल के रूप में प्रकट हुए हैं, तो भगवान वही है, सबके सामने प्रकट होते हैं, बस व्यक्ति की भावनाओं के अनुसार वो उनके सामने प्रकट होते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामि अहम्। जब जैसी भावना रखता है भगवान उसके सामने उसके समक्ष प्रकट हो जाते हैं। और वैसे यहां पर कंस के सामने काल के रूप में प्रकट हो गया। तो भक्तगण हमेशा इस मृत्यु को स्वीकारते हैं, बड़े प्रेम से स्वीकारते हैं। और अभक्त लोग हमेशा इससे घबराने को टालने को देखते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद अपने कन्वर्जेशन में बताते हैं, एक व्यक्ति था बड़ा रईस था और उन्होंने अपने नाम से पूरा एक हॉस्पिटल रख दिया था। बोला कोई कोई मरीज इसमें नहीं जाएगा, और उसमें सारे डॉक्टरों को भी रखा था, बोला केवल मेरा ट्रीटमेंट करेंगे। और जब उनका जब देह जब बुरी तरह से अस्वस्थ हुआ, तो जब उनको जब अस्पताल लेकर गए, तब उस समय डॉक्टर ने चेकअप किया तो कहा कि बचना मुश्किल है। तो इन्होंने कहा डॉक्टर मुझे एक साल और दे दो, मेरा बड़ा प्रोजेक्ट बाकी रह गया है। तो डॉक्टर ने कहा एक सेकेंड भी बचेंगे तो ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। और जबकि ये मुंह मांगा इनाम दे रहा था, लेकिन कोई लाभ नहीं। वैसे ही ये जो काल जब किसी के समक्ष आ जाता है, तो व्यक्ति का बचना नामुमकिन है। और व्यक्ति अपने इस काल से बचने के लिए तरह तरह के मार्ग देखते हैं। और जबकि भक्त ऐसे मृत्यु को आमंत्रित करते हैं, जैसे बताया जाता है चित्य माने यमेर केते कृत नीतम वनस्पतिम खगस्व केतम उच्छ्रित्य क्षेम ज्ञाति ही अलंपटा। जैसे ग्यारहवें स्कंद में जहां पर वर्णन आता है छिद्य माने यमेर एते, जब कोई लकड़ी काटने वाला व्यक्ति जब आता है लकड़ी काटने के लिए, तो उस पेड़ के ऊपर चिड़िया ने अपना घोंसला बनाकर अपने परिवार के साथ रहता है। हालांकि उस घोंसला बनाने के लिए उन्होंने कितने प्रकार के परिश्रम किए, कीट नीतम वनस्पति ना अलग अलग प्रकार से उन्होंने वो से घोंसला बनाने के लिए तिनके वगैरह इकट्ठा कर लिए और अपने परिवार के साथ रहते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये देखा कि लकड़ी काटने वाला व्यक्ति आ रहा है, उसी क्षण उश्रिज हगस्व केतम, वो जो पक्षी है उसी समय उस लकड़ी काटने वाले को देखते ही उस पेड़ को बिना कोई अलंपट, वो बिना कोई आसक्ति से उस स्थान को छोड़कर उड़ जाते हैं। वैसे ही जो भक्त जो होते हैं, जब उनको पता लगता है कि मृत्यु आ रहा है, तो मृत्यु आ रहा है उसी क्षण उसके पहले ही वो अपने इस देह रूपी जो पेड़ रूपी जो देह है उसे छोड़कर वो पक्षी जो है यानी कि वो आत्मा इस देह से उड़ जाता है बिना कोई आसक्त से। जैसे परीक्षित महाराज ने जैसे ही उस तक्षक नाग को देखा, उसी क्षण उन्होंने उस देह को छोड़कर उड़ गए और वो केवल जो तक्षक जो था उनके बाहरी शरीर को जला दिया। तो वैसे जो भक्त जो होते हैं मृत्यु को आमंत्रित करते हैं, और अभक्त लोग मृत्यु से डरकर भागते हैं। तो भक्तों के सामने काल जो है वो अपना सर झुका देता है, अभक्तों के सामने काल जो है उस अभक्तों के सर पर मंडराता है और उसके ऊपर पैर रखता है। जैसे कि जब ध्रुव महाराज के लिए जब विमान आया था, तो ध्रुव महाराज ने काल के सर के ऊपर पैर रखकर विमान पे चढ़ गए। तो वो उनके पास वो क्षमता थी, क्योंकि एकमात्र वो भगवान का भजन करने के कारण। तो वास्तविक जो तरीका क्या है इस काल से बचने का, काल से बचने का तरीका यह है कि जो मृत्यु से जो घबराता है, जो मृत्यु स्वयं जिससे घबराता है, उसका शरण लेना, और यही एकमात्र विधि है। मत भयात वाति वातोयम सूर्य तपति मत भयात, जो कि वायु जो है वो जब हिलता डुलता भी है तो किसके, भगवान के भय से हिलता डुलता है। सूर्य तपति मत भयात, सूर्य भी जब किरण देता है तो वो भी घबरा कर देता है भगवान के आज्ञा के अनुसार। वर्षति इंद्रो, जो इंद्र जो है वो अपना वर्षा बरसाता है भगवान के भय से, कभी कभी रोग भी देता है भगवान के भय से, जैसे गोवर्धन लीला में हुआ। और वही भगवान के भय से मृत्यु भवती, मृत्यु भी स्वयं घबराते हैं भगवान के नाम से यद भी वती स्वयं भयम। तो वो भगवान का नाम इतना शक्ति सक्षम है कि व्यक्ति को समस्त प्रकार के भय से छुटकारा दे सकता है। इसीलिए रूप गोस्वामी अपने पद में वर्णन करते हैं, बेपंते दुरितान मोह महिमा सम्मोहम मालम्मते सांसंकम नखरम जनम कलयति श्री चित्रगुप्त कृति सानंदम कसम रुदा विदो वेधा करोति उद्यमम वक्तुम नामे प्रवेश्वरा विलसते कि मन्यत्रुमत्रुमम। वो कहते हैं बेपंते दुरितान मोह महिमा, जैसे ही कोई भगवान का नाम जप करने के लिए सोचा, मोह महिमा माया देवी कांपने लगती है। सम्मोहम मालम्मते सांसंखम नखरम जन्म कलयति श्री चित्रगुप्त कृति, चित्रगुप्त जो है जो सबका रिकॉर्ड लिख रहे, वही चित्रगुप्त उनके सारे जितने भी चेलेगण यमदूत गण वो सभी लोग उस बंदा को देखकर दूर खड़े रहकर हाथ जोड़कर खड़े हैं। क्यों? क्योंकि अब ये मेरे प्रभु का नाम लेगा, क्योंकि एक बार अनुभव हो चुका है अजामिल के केस में, अब दोबारा उन लोग खतरा नहीं लेना चाहते, इसलिए कोई लेने वाला उसके पहले ही वो दूर खड़े। और वैसे वेधा जो कि ब्रह्मा जी वो उस व्यक्ति के लिए आसन तैयार कर रहे हैं अपने अपने लोक में, उसके लिए पूजा थाली तैयार कर रहे हैं, चामर मोर पंख इत्यादि सभी तरह से उनका स्वागत करेंगे। जब वो भगवान का नाम लेने के लिए अब तक किया नहीं है, सोचा है, उसके लिए अभी से ब्रह्मा जी ने उसके लिए सीट रिजर्व कर दिया है। तो जरा सोचिए कि रूप गोस्वामी आगे कहते हैं कि अगर कोई जप कर रहा है रोजाना तो उसके लिए मेरे पास कलम नहीं है लिखने के लिए कि वो भगवान के नामों के जप की क्या महिमा है। तो केवल भगवान का एक नाम व्यक्ति को समस्त प्रकार के भय से छुटकारा दे देता है। तो ये विधि है, जबकि कंस ने उस विधि को छोड़कर वो अपने बल से अपने तौर तरीके से उस मृत्यु को टालने का प्रयास किया। और आगे जाकर कंस की क्या गति होती है वो आगे पता लगेगा। हरे कोई प्रश्न कोई जिज्ञासा है तो पूछो। हाँ लाल गोविंद सो एनी कमेंट। कुछ कमेंट? थैंक यू। कोई प्रश्न किसी का? धन्यवाद आप सभी का। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की।